देखेंगे आज के सबक का थोड़ा सा ओवरव्यू। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, नेकी का जामे तसव्वुर। आज के लेसन के टॉपिक्स आयत नंबर 177, इसका टॉपिक है नेकी क्या है। आयत नंबर 178 से 179, इनका टॉपिक है कत्ल के बारे में इस्लामिक कवानीन। और आयत नंबर 180 से 182 में टॉपिक है वसीयत के बारे में इस्लामी अहकाम। आप कह सकते हैं कि यहाँ से सूरत बकरा का वो हिस्सा शुरू हो रहा है कि जो सूरत के आखिर तक पूरे दीन इस्लाम को हमारे सामने खोल के रख दे, ख़ास तौर पे आयत नंबर 177 सूरत बकरा। इसी से आगे तक फिर टॉपिक चलते जाएंगे नेकी के मौजूद के। तो आइए ज़रा सूरत को शुरू करते हैं। आयत नंबर 177, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل و جان سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب وہ عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی ہیں متقی لوگ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ سے کوئز میں سوال پوچھ لے کہ آیت بر کون سی ہے تو فوراً کہہ سکیں گے کہ سورت بقرہ کی آیت 177۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی بر کیوں کہتے ہیں۔ کچھ روٹ ورڈس دیکھ لیتے ہیں اس سورت کے اندر جو آئے۔ مشرق لفظ شین را قاف، المغرب غین را با، ملائکتی میم لام کاف۔ اس کے لفظ میں کئی مختلف لفظ آپ کو ملتے ہیں، علی کا سے بھی یہ ہوتا ہے، پیچھے ہم بات کر چکے ہیں اس پہ۔ حمزہ لام کاف بھی ہوتا ہے اس کا روٹ، اور میم لام کاف بھی ہوتا ہے۔ الکتاب کاف تابا، قربا قاف روبا، اور یتامہ یا تا میم یتم سے۔ السائلین سین حمزہ لام، الرقاب را قاف با، الموفون واو فایا، بأسائی با حمزہ سین جس کو الف کہتے ہیں، با الف سین یا با حمزہ سین، الدرائی دعات را را، اور الباس کا جو لفظ ہے اس کا بھی وہی روٹ ہے، الباسا والا با حمزہ سین۔ تھوڑا سا ہم اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے بر۔ بر کا لفظ جو ہے نا یہ با را را سے ہے، اور بر بر کی صورت میں جب آتا ہے، اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں بحر و بر، تو خشکی کے لیے آتا ہے۔ امیجن کریں کہ کوئی سمندر میں کئی دن سے سفر کر رہا تھا، یا سمندر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک قسم کا دھڑکا لگ جاتا ہے کہ ہم سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، لیکن جو ہی ہمارے قدم زمین پہ لگتے ہیں تو ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے۔ تو بر بر کیا ہے؟ وہ چیز جو بندے کو سکون دے، اطمینان دے۔ یہ ایک وجہ ہے نیکی کو یہاں بر کہنے میں۔ بر کہتے ہیں جنگل کو، بر یعنی اس دونوں کا ربط ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بر جنگل کو بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا بر کے لفظ میں ایک اور معنی بھی چھپا ہوا ہے، और वो क्या कि जिस तरह जंगल में छोटी और बड़ी लकड़ियाँ होती हैं ना, कुछ दरख्त बड़े होते हैं, कुछ छोटे दरख्त होते हैं, कहीं झाड़ी झड़ी बूटियाँ होती हैं, कहीं घास होता है, तो बिर कहते हैं मुख्तलिफ एंगल्स की नेकियाँ। मैं इतनी इस पर जोर शिद्दत इसलिए बरत रही हूँ कि इंशाल्लाह इस एक लफ्ज़ से ही आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि अल्लाह सुबहाना ताला कुरान पाक में जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो अपने माने के अतबार से बेहतरीन हक अदा करते हैं। हालांकि नेकी के लिए और कई लफ्ज़ आते हैं। असल में तो ये आयत पारे के आगाज़ में जो आयत थी सयकूलु सुफहाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम ही के ज़िमन में उतरी कि यहूद और नसारा आपस में किबले के ही ऊपर झगड़ते रहते थे, और जब मुसलमान बीच में आ गए तो फिर मुसलमानों की तरफ भी यही बात कर दी। यहूद जो थे वो बैतुल मक़दस के मगरबी हिस्से की तरफ इबादत करते, नसारा जो थे वो मशरक़ी हिस्से की तरफ करते, और दोनों अपने ही हिस्से की तरफ करने पे फ़ख्र करता। अब जब मुसलमानों ने बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी तो चहमगोइयाँ शुरू हो गईं, बड़ी बातें शुरू हो गईं, ये है वो है, तो अल्लाह ताला ने सब की आंखें खोली कि होश करो, सिर्फ मशरक़ की तरफ मुँह कर लेना भी कोई नेकी नहीं है। और ये कह देना कि मशरक़ और मग़रिब नहीं, किबले को देखो ही ना, जिधर मुँह कर लो, ये भी नेकी नहीं है। याद रखिए कि किसी भी सोसाइटी में दो किस्म की एक्सट्रीम पाई जाती हैं, दो किस्म के इंतहाई रवैये पाए जाते हैं नेकी के तसव्वुर के बारे में। एक तसव्वुर क्या होता है कि बस नाप तोल के नेकियाँ करो रिचुअल्स के साथ, 19 से 20 मशरक से मग़रिब इधर से उधर हो गया तो समझो कि बस बात गई, अब तुम्हारी नमाज नहीं हुई, अब तुम मोमिन नहीं, अब तुम काफिर नहीं, हम तो तुम्हारे पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। बाज़ दफ़ा तो मस्जिदों में ये झगड़े तक देखे गए कि हम इसलिए नमाज़ नहीं पढ़ेंगे कि इमाम साहब मसा क्यों करते हैं, तो लिहाजा जो इमाम मसा करके जराबों पे नमाज़ पढ़ाता है हम पढ़ेंगे नहीं, और मस्जिद दो फ़िरकों में बट के एक बड़ी बड़ी लड़ाइयों का अखाड़ा बन गई। एक तो ये सोच है कि सिर्फ और सिर्फ नाप तोल के नेकियां करो, एक दूसरी सोच क्या होती, कहते छोड़ ही दो, जो जिसका दिल करता है उसको को करे, जो जिसकी सोच है वो पूरी कर ले। ये दोनों राय दुरुस्त नहीं। इस्लाम इन दोनों के बीच की चीज़ हमें बताता है कि नेकी क्या है, वो दोनों चीज़ों को साथ लेके जाने का नाम है। अगर हम देखें तो किसी भी सोसाइटी में चार किस्म के लोग होते हैं मोस्टली। हम थोड़ी सी बैकग्राउंड पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह ये आयत आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। हम अपने इर्द गिर्द चार किस्म के लोग देखते हैं, और हर माशरे में जहाँ मर्जी आप चले जाएं दुनिया के किसी हिस्से में, ये चार गिरोह हमेशा मिलेंगे। एक गिरोह जो सबसे नीचे से अगर हम शुरू करें, मुजरिम लोग, क्रिमिनल्स, मसलन चोर, डाकू, तवायफें, पेशावर ख़वातीन, जिनको लोग कभी भी पसंद नहीं करते। ये वो गिरोह होता है कि जिनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इनका तसव्वुर आते ही दिल में आता है कि गुनाहगार लोग, फासिक, मॉडल्स, जिस्म फरोश और जेब कुतरे किस्म के लोग हैं, डाकू, राजन, हाँ, और जितने मर्ज़ी आप सोच लें, तहरीबकार किस्म के लोग। अब हम इनका तसव्वुर लाते दिन में क्या लाते हैं, बड़े ख़राब लोग, बड़े बुरे लोग, ठीक है। लेकिन ज़रा इमेजिनेशन में लाइए कि क्या ये लोग भी कोई नेकी करते हैं, क्या इनके अंदर भी कोई नेकी की तलब तड़प है? बिल्कुल है। कैसे? चोर को देख ले, कभी अपने इलाके में चोरी नहीं करेगा, दूर जाके करता है, कहता नहीं अपने मोहल्ले में चोरी नहीं करूँगा। एक तो पकड़े जाने का डर होगा ना, एक दूसरा थोड़ा सा इंसान होने के नाते शर्म भी होती है कि यहाँ तो इनसे रोज़ सामना होता है, इससे पीछा होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जेब कुतरा, अमूमन ऐसे लोग गिरोहों में काम करते हैं, एक दूसरे की जेब नहीं काटेंगे, बाज़ दफ़ा गैंग्स होते हैं। उनके यहाँ नेकी क्या है कि सारा दिन की जितनी चोरी की कमाई है ला के अपने मालिक के हाथ में रख दें। बाज़ लोगों ने हायर किए होते हैं बैगर्स, सारा दिन भीख मांगते हैं और रात को आके अपने मालिक के हाथ में रखते हैं, फिर वो उनको पे देता है, तो नेकी तो ये भी कर ही रहे हैं ना। आप ऐसे लोगों से पूछेंगे नेकी क्या, वो कहेंगे नेकी ये है कि फेयर रहो, सारे पैसे एक जगह रखो फिर शेयर करेंगे, अपने इलाके में चोरी ना करो। बस चोरी करते हुए ये सोचते हैं कि अच्छा चोरी करके इसका माल हम गरीबों को बांटेंगे, तो क्या पता चला कि जो बात शुरू में हमने की कि नेकी की अर्ज हर बंदे के अंदर है। जिस तरह हमें भूख लगती है ना तो हम खाना खाते हैं, हमारा जिस्म कुछ घंटों के बाद खाना मांगता है, इस तरह इंसान होने के नाते हमारी रूह जो है ना वो नेकी मांगती है। अब हमारी में मैं आप मुसलमान नहीं, हर इंसान जिसको आप इंसान कहेंगे, परवर्टेड माहौल में पला हुआ इंसान भी, किसी क्लब के अंदर नाचने वाली औरत भी, डांसर भी, तवायफ भी, प्रोस्टिट्यूशन करने वाली भी, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने वाला भी, सबसे जालिम शख्स जिसका नाम दुनिया में हिटलर के नाम से मारूफ है, होंगे और भी लोग लेकिन दौरे हाजिर की बातें हैं, तो उसको भी कहते हैं कि लोगों को तो मरवाता था लेकिन बच्चों पे उसको बड़ा प्यार आता था। हर बंदे के अंदर नेकी की तलब है, तो ये जो सबसे निचला तबका होता है ना मुजरिम, ये भी कहीं ना कहीं नेकी करते हैं, और अल्लाह ना करे हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़े। कभी आप इनके करीब अगर हों या इनकी बातें सुनें तो ये भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करते दिखेंगे कि ये करो और वो करो नेकी ऐसी, और हम ये कर रहे हैं और हम अपना हक ले रहे हैं, ठीक है। तो गोया कि ये वो थे वर्स्ट किस्म के लोग। इससे थोड़ा सा आप मिसाल है किसी तकरीब कार को जाके पूछें, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, वो कहेगा मैं हक दे रहा हूँ, हुकूमत फेयर नहीं है, मैं मुल्क को नुकसान दे रहा हूँ। बड़े से बड़ा गैंग भी है ना जो दुनिया में बड़े बड़े जहाज़ भी गिराएगा ना, आप अकेले में उसके पास भी जाके पूछेंगे तो उसने भी एक नेकी का मेयार बनाया हुआ, वो कहेगा हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम लोगों पे जुल्म नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं कई साल पढ़े लिखे होने के बावजूद जब जॉब नहीं मिलती चोर बनते हैं, पूछो क्या करें, कहते हैं ऐसे नहीं मिला तो वैसे ले रहे हैं। किसी रिश्वत लेने वाले से पूछिए क्यों ले रहे हो भाई, वो कहेगा इसलिए कि जी बीवी बच्चों को पालना है, गुजारा नहीं होता, क्या करें। तो गोया के नेकी का एक इनका भी मेयार है। चलिए दूसरे गिरोह पे चलते हैं। एक दूसरा गिरोह होता है जिनको अमूमन उर्फ आम में शरीफ शुरफा कहते हैं। मेजॉरिटी ऐसी होती है किसी भी सोसाइटी में, बाइज्जत लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको लोग अच्छा समझते हैं। आप इमेजिनेशन में ले आएँ, आप कितने लोगों को जानती हैं, उसमें बहुत थोड़ों को आप बुरे रंग में जानती होंगी, किसी को अखबारों से जानती होंगी, किसी को मीडिया से, किसी को रियल लाइफ में भी आप जानती होंगी कि ये बड़ा ख़राब इंसान है, शराबी कबाबी। लेकिन अमूमन हम जिन लोगों को जानते हैं वो कैसे होते हैं, हम कहते हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत शरीफ हैं, ये किसी को दुखाते नहीं, और ऐसे लोगों की कसरत है। मसलन ये क्या होते हैं कि मस्जिदों में नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रख लेते हैं, हज भी करते हैं, फिर मस्जिदों में कालीनों की ज़रूरत पड़े कालीन जाके बिछाते हैं, खाने खिलाते, इफ्तारी खिलाते। इन में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं कि जो कहते हैं कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ बना लेते हैं ताकि कुछ तो आखरत बन जाए और कुछ इस तरह करें, लेकिन साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी में गुनाहों की भी रेस लगी होती है। एक तरफ नेकियों की दौड़ है, दूसरी तरफ गुनाहों की दौड़ है। गोया कि आप दो गाड़ियों को दौड़ता हुआ देखें, एक गाड़ी नेकी की तरफ भाग रही है और एक गुनाह की तरफ भाग रही है। इनकी भी ज़िंदगी में देखें तो झूठ बहुत होगा, स्मगलिंग है कारोबार में, सूद है कारोबार में, झूठ बोल रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, अनऑफिशियली काम करते करवाते दिखते हैं। रस्मों में देखें तो ये लोग आगे से आगे बढ़े हुए आपको दिखेंगे। औरतों को देख लें, गिफ्तें भी खूब करेंगी, तंज भी बड़े दें करेंगी, ताने भी देंगी। ऐसे ग्रहों में विरासत में बहुत हक तलफियाँ भी हैं, ये मरबा है आप ये कह लें। खलत अमलन साल खनवा खिरा सैया हो, सूरह तौबा में आता है कि जिन्होंने ज़िंदगी में मिला जुला ली हैं नेक और बदअमल। अब इनसे पूछें नेकी क्या, वो कहेंगे बिल्कुल नेकी है नमाज़ पढ़ना, तो आप कहेंगे ये अभी जो आप कर रहे थे वो क्या, कहना ये बिज़नेस है। किसी एक ने बताया कि किसी मौके पे उनका कोई बच्चा किडनैप कर लिया गया, और बाद में फ़ोन पे पता चला कि फ़ोन आया किसी जगह कि अगर आपको अपना बच्चा लेना है तो फलां जगह पे इतने लाख रुपए लेके आ जाएं, हम बच्चा आपको दे देंगे। अब क्या करते, जो भी करना था पैसा लेके घर का कोई बंदा वहाँ गया जो जगह उन्होंने बताई थी, जब बेल की तो पूछा जी यही जगह है, यहाँ फलां सब है, जी हाँ, दरवाज़ा खोल दिया गया, कहा बैठिए, किधर है वो, किधर है, कहा अभी आते हैं। तो जब वापस कहा गए किधर है, कहा नमाज़ पढ़ने गए। जब अंदर आए और जो पैसे देने गए थे, इन्होंने कहा कि आपसे बात हुई थी दिस एंड दैट, जी हाँ जी आप वही हैं, जी वही हूँ, कहा पैसे लाएँ, ये लाया हूँ। पैसे ले दे के बाद में कहा एक बात तो बताएं कि एक तो आप बच्चे को किडनैप करा के और उसके आप पैसे ले रहे हैं, और अभी मैंने सुना कि आप नमाज़ पढ़ के आए हैं। कहता जी वो मेरा दीन है, ये मेरा कारोबार है। तो ये है खलत अमलन सालेहन, ये रोने का मुकाम है। ऐसी अक्सरियत आज हमें अपने इर्द गिर्द दिखती है, हम भी वही हैं शायद, कि जिनको जिन्होंने अपने लिए दो रास्ते रखे हुए हैं। जैसे चूहे को जब भी ख़तरा आता है ना तो बिल में घुस जाता है, इस तरह इस किस्म के मुसलमानों ने बिल बनाए हुए हैं। मुसीबत आती है तो जाके मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ाते हैं, कोई मुश्किल आई तो एक बकरा कुर्बान कर दिया, रमज़ान आया तो सारे टीवी सारे शैतान बंद कर दिए, सारी चीज़ें ठीक करके रख लें। ये दोगले किस्म के लोग होते हैं, इनके पास कुछ नेकियाँ कुछ बदियाँ हैं लेकिन बीच बीच में। चलिए तीसरे तबके पे चलते हैं। तीसरा तबका किसी भी सोसाइटी के सबसे बुलंद दर्जे के लोग होते हैं, या समझे जाते हैं आप कह लें, जिसको आप मजहबी तबका कह सकते हैं, دیندار طبقہ، لوگ ان کو نیکی سے پہچانتے ہیں، مثلا مسجدوں میں نماز پڑھانے والے امام حضرات، مفتی حضرات، علماء کرام، درس دینے والے، پڑھنے پڑھانے والے، یعنی کسی بھی سوسائٹی میں جن کو لوگ دین کی کسی رنگ سے جانے، حافظ قرآن، بچوں کو پڑھانے والے مولوی صاحب، یہ طبقہ دیکھا جائے تو ان دو گروپ میں سے تیسرا بہترین گروہ سمجھا جاتا ہے دین کے ناطے سے. اب ان میں دیکھیں گے تو ہوگا کیا کہ یہ رچولس کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں، یہ کرو وہ نہ کرو، داڑھی کی لمبائی کتنی ہو، شلوار ٹخنوں سے کتنی اونچی ہو، یہ اس پہ بہت پکی ہوں گے، نماز کیسے پڑھی جائے اس پہ گھنٹوں باتیں ہوں گی، حرام ہے کہ حلال ہے اس پہ خوب باتیں کریں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے برعکس ایک دیکھی جا سکتی ہے چیز بعض دفعہ کہ اخلاقیات میں کمی ہوتی ہے، لوگوں کا درد نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہی دین 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 کی بات کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی کھا سکے، ہاں ہمدردی کا احساس کم ہو سکتا ہے، بات کرنے میں سختی ہو سکتا ہے، ٹونٹنگ ہو سکتا ہے، اسٹائل گھر میں بڑے سخت ہوں، بیوی پہ سختی کرنے والے ہوں، شوہر کی نہ ماننے والی ہو ایسی خاتون جو دوسروں کو بڑے باز فرمائے اور شوہر کی بات سن کے آگے سے بولے، ہاں ان کے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریچولس بہت ہیں. ریچولس کو اردو میں کہہ لیں مظاہر، دین کے مظاہر، اوپر اوپر سے جو دین ہے وہ بہت ہے لیکن اخلاق کی کمی ہو سکتی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ نہیں ہوتی لیکن عموماً یہ دیکھا گیا. چلیے چوتھا گروہ کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے ان لیڈس، اعلیٰ طبقہ، ٹرینڈ سیٹرس، پڑھے لکھے لوگ، کریم آف دا سوسائٹی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، پروفیشنلس، بہترین تعلیم یافتہ، پی ایچ ڈی ہولڈرس، ڈاکٹرس، سرجنس، ایم پی ایس، ایم این ایس، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے، بڑی بڑی ڈگریز ہیں ان کے پاس، فلاں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس کا سلوگن گاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے نام کے آگے پیچھے دو تین صاحب کے لاحقے ہوں گے، یعنی واقعی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیک کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، پرومیننٹ پیپل، فیمس پیپل. اب ان کے قریب جا کے آپ دیکھتے ہیں بھائی نیکی کیا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کے ہاں اخلاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ایتھکس پہ بڑی بات کرتے ہیں، ان کا اخلاق نارملی بہت اچھا ہوتا ہے. ان کے یہاں نیکی کیا ہے، وقت کی پابندی کرو، جو وقت دیا اسی پہ جائیں گے، بات کرتے ہیں تو بہت پولائٹ، سافٹ، حتیٰ کہ اپنے ملازموں سے بھی بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں، اپنے کک کے ساتھ بھی نرم بات کریں گے. ان کے پاس جب بھی آپ دیکھیں گے نا تو یہ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے موسٹلی، کہتے ہیں کسی کو برا نہ کرو، بس اچھے انسان بنو. دین یہ سب کا پرسنل معاملہ ہے. اب ان کا حال کیا ہے کہ یہ اخلاقیات یعنی ایتھکس میں بہت آگے ہیں لیکن ریچولس کی اہمیت نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جی نمازوں سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بس ایسے ہی اللہ دیکھتا ہے، ورنہ اللہ نے کوئی ہماری نمازوں سے تھوڑی بخشنا ہے، اور پردہ وہ تو ویسے ہی دل کا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ دل پر پردے ہی پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا بھی معیار ٹھیک نہیں ہے، پچھلے دو کو تو چھوڑ دیں، ایک تو ویسے بیچارے محروم لوگ تھے جو گناہوں میں پڑے ہیں، ان کو تو عقل ہی جتنی تھی، لیکن جو شریف شروعات تھے وہ بھی دو کشتیوں کے سوار تھے. اصل مقابلہ کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے نا تو یہ نمبر تین اور نمبر چار کا ہوتا ہے، ہم بھی اسی کو بیس بنا کے نیکی کو سمجھیں گے. کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں، بلکہ اپنی سوسائٹیز میں دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جائیں، درس دینے والوں کے پاس جائیں، تو عموماً وہ دولت مند اور پڑھے لکھے لوگوں کی برائی پیش کریں گے. وہ کہیں گے یہ دولت سمپت ہے، اتنی بڑی گاڑی میں پھرتے ہیں، دیکھیں ذرا انہوں نے اتنا بڑا گھر بنایا ہوا ہے، یعنی وہ ہر وقت ان پہ ٹانٹ کریں، دیکھیں انگلش بولتے ہیں، ان کے بچے بھی انگلش بولتے ہیں، پینٹ دیکھیں ان کی کہاں گئی ہوتی ہے، اور دیکھیں ان کے بچیاں کیا پہنتی ہیں، الا ماشاء اللہ، یعنی ٹون یہ ہوتی ہے، یعنی یہ پیسے والوں کو خوب برا بھلا کہتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کو ان کا خیال ہوتا ہے ان کو کیا پتا ہے جی دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ دنیا کی ڈگریاں کما رہے ہیں اور بس اپنے گھر بنا رہے ہیں، ہمیں ان سے ان کو کیا پتا کہ ہم دین کا جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور کبھی آپ یہاں سے اٹھ کے کسی مسٹر کے پاس چلے جائیں تو کہے گا دیکھے وہ ملا، یہ ملا کو کیا پتہ ہے آج دنیا کہاں جا رہی ہے، اور یہ ملا تو مسجد میں بیٹھ کے پانچ وقت نماز پڑھاتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے دنیا میں کیسے جیتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہمارے کاروباری حالات کیا اور ہماری کیا ضروریات ہیں، نہ انہوں نے نیتی نہ قضا کی تھی، ان کو کیا پتہ، ان کو تو ہمارے پرابلمس نہیں پتہ، وہ ان کی برائی کرتے ہیں. دیکھیے کبھی آپ کو یہ بات ہے، جمعے کے خطبوں میں دولت گھر بڑے گھروں پہ تنقید ہے، اور کسی بڑے والے کے پاس چلے تو وہ مولوی کے لطیفے سنائے گا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج ملا اور مسٹر کی دوڑ لگی ہوئی ہے. दोनों एक दूसरे से पीछे, लेकिन दोनों का गुजारा फिर नहीं है एक दूसरे के बगैर। जब मिस्टर साहब का बच्चा पैदा होता है तो मुल्ला साहब को बुलाना पड़ता है, आए बच्चे के कान में अजान दे दें। जब मिस्टर और बेगम या मैडम को किसी बच्चे का निकाह पढ़ाना होता है तो वो मौलवी साहब को बुलाते हैं। और जब समझे कि मिस्टर और मिस्ट्रेस जो हैं उनकी सास का इंतकाल हो जाता है तो वो फिर बुलाते हैं मौलवी साहब को, आइए जी जनाजा पढ़ाएं और 750 बच्चे भी बल्कि 30 ही ले आइएगा, एक कुरान पढ़ जाएं आके, हम आपको उतनी देर में खाना खिलाएंगे पका के, आप कुरान पढ़िएगा हमारे मुर्दे को बख्शिए बैठ के, हम तो हमें तो आता ही नहीं पढ़ना। हाँ, और दूसरी तरफ जब मौलवी साहब हैं उनको मस्जिद बनानी है, जब उनको दीन का काम करना है तो वो जाके मिस्टर साहब का दरवाज़ा खटखटाएंगे, भाई कुछ डोनेशन करें, कुछ अल्लाह का खौफ करें, आपका घर इतना इतना सजा हुआ है और मस्जिद जो है वो उसकी छत गिर रही है, और आपका घर इतना बड़ा है और अल्लाह का घर इतना छोटा है। गुजारा दोनों का नहीं है। आज के दौर में ज़रूरत किस बात की है कि मुल्ला और मिस्टर को शेक हैंड करवा दो, दोनों को मिला दो, इनकी लड़ाई ख़त्म करा दो। आप इस मिसाल से ये समझें कि जो दीनदार हजरात है ना वो किधर है, वो एक जिस्म है, नेकियों का जिस्म बाहर दिख रहा है, नमाज रोज़ा फिज़िकली आप देखें कि नेकियों को सामने रखें आप, रिजिड हैं वो इसमें। जो मिस्टर्स हैं ना या दूसरे हजरात हैं वो क्या है, रूह पे बात करते हैं। दो चीज़ों से एक जिस्म बनता है ना एक इंसान, जिस्म और रूह। दीनदार हजरात जो हैं वो जिस्म है नेकी का, और जो पढ़े लिखे हजरात हैं जो वाकई हाईली सेंसिटिव पीपल हैं वो उसकी स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बात करते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग फिर रहे हैं इस वक्त। आप देखिए कि ये जिस्म है ना, इस वक्त मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आपको मेरा जिस्म दिख रहा है, मेरे अंदर रूह भी है तभी बोल रही हूँ ना। और अगर अभी मेरा जिस्म तो इधर ही पड़ा रहे और मेरी रूह निकल जाए तो क्या बनेगा? मौत। मौत किस चीज़ का नाम है कि जिस्म कहीं और होता है, रूह कहीं और पहुँच जाती है? कोई मौत में हम ख़त्म तो नहीं होते, सिर्फ डिटैच हो जाते हैं, इंतकाल कर गए, ट्रांसफ़र कर गए, मूव कर गए हजरात। जिसम हमारे पास होता है, रूह आगे चली गई। इन दो को मिलाते हैं तो ज़िंदगी, इन दो को अलग करते हैं तो मौत। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव तारों को मिलाते हैं तो करंट पास होने लगता है, जब अपोजिट करते हैं तो नहीं बनता। अब हुआ क्या कि दोनों ने दो अलग चीज़ें पकड़ी हुई हैं, एक सिर्फ रूह पे बात कर रहा है, एक सिर्फ उस पे कर रहा है। आप कह सकते हैं कि हर एक के पास अधूरी नेकी है। ये ऐसे जैसे आप में से कोई इस स्विच की राइट साइड पकड़ के बैठ जाए और दूसरा लेफ्ट पकड़े और आप कहें कि इस माइक को ऑन करते हैं, नहीं होगा। वो लेफ्ट और लाइट दोनों जो है वो उसके आउटलेट में डालनी पड़ेगी, फिर बिजली चलेगी और आवाज़ आएगी ना, ठीक है। अब आप सोचिए कि कुरान पाक में जो बात आती है कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिकि वल मग़रिब, इसमें इसी कॉन्सेप्ट को ठीक किया जा रहा है कि ना तो नेकी सिर्फ रिचुअल्स का नाम है, पांच वक्त की नमाज, फिर तहज्जुद, फिर तरावी, फिर सब, सिर्फ इसका नाम नहीं है कि अगर उसमें अल्लाह ही ना याद आए एक बार। 20 तरावियों में आपको 100 दफ़ा ख्याल आए थक गई हूँ, कब ख़त्म होगी, कब पारा ख़त्म होगा, मौलवी साहब थक गए नहीं, मौलवी साहब रहम करें, जल्दी जाने दें, अभी तो 20 रहती हैं, अभी 18 हुई हैं, अच्छा अभी 16 हुई हैं, अच्छा अभी इतनी रह गई हैं। ये तो आप रो रहे थे, हाँ रोती धोती आपने 20 तरावियाँ पढ़ ली, आपने एक जिस्म खड़ा कर दिया 20 तरावियों का, लेकिन स्पिरिट ही कोई नहीं अंदर। और दूसरे साहब वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, मैं जाके बिस्तर पे लेटा हूँ और चलाओ मेरी पसंद की मूवी, और अल्लाह ने ऐसे ही बख्श देना, उसने कोई तुम्हारी इन टकरों से थोड़ी बख्शना। वो साहब कहते हैं कि क्या करना है रोज़े रख के, वो तो पहले दौर में होते थे जब गुर्बत बड़ी थी तो कहा चलो कुछ खाना कम है तो रोज़े ही रख लिया करो। मर्दों की जो शलवार की बात करते हैं, मैंने खुद किसी की सुनी, कहा कि ये जो मर्दों को टखनों को खुला रखने की बात है ना, ये अल्लाह के नबी के दौर में थी, क्योंकि कपड़ा थोड़ा होता था, गुर्बत बड़ी थी तो कहा ज़रा टखनों से ऊंची कर लो। हालांकि उसी दौर में औरतों को कहा गया कि युतनीन आलई हिन्न मिन जलाबीबी हिन्न, कि तुम अपनी ओढ़नियों को अपने जिस्मों पे लगाओ कि पाँव से भी नीचे गिरे तो गिरने तो कोई बात नहीं है। उस दौर में तो कोई गुर्बत ना आई। हाँ, लोग कैसे नेकी से दूर हटते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ यही बता दिया कि रिचुअल्स को छोड़ के अगर तुम जाओगे फिर भी गलती पे हो, और सिर्फ तुम एथिक्स की बातें करते रहोगे फिर भी तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें नेकी का एक मुकम्मल सर सब्ज़ो शादाब दरख्त बनना होगा। मसलन आप दरख्त किसको कहते हैं, जिसमें आपके देखने की नज़र में चलें जड़ें तो आपको नहीं दिख रही, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपका ईमान है कि नीचे जड़ें हैं, फिर आपको तना दिखता है, फिर पत्ते दिखते हैं, फिर टहनियाँ दिखती हैं, फिर फल दिखता है, इसको आप कहेंगे दरख्त। और अगर आपको कहीं नीचे गिरा हुआ पत्ता गिर मिले तो कोई आपसे पूछे कि ये क्या है, तो कोई उसको कह दे कि ये दरख्त है, तो आप हंसेंगे कि उसको कहेंगे ठीक कहते हो, आप कहोगे अहमक ये दरख्त नहीं है ये पत्ता है, कहीं गिरी हुई छोटी सी टहनी पकड़ें आप, कोई राह चलता आपसे आके पूछे भाई ये क्या है, तो आप कहेंगे जी ये टहनी है, नहीं आपके नहीं जी ये दरख्त है, तो कहेगा अल्लाह के बंदे ये दरख्त थोड़ी है, दरख्त तो वो लगा हुआ है उसकी गिरी एक टहनी है। अब उसी पत्ते को जाके आप टहनी के साथ जोड़े, फिर उस टहनी के साथ एक किसी भी तने के साथ जोड़ दें, अब वो दरख्त बनेगा। असल ये है नेकी कि पूरे दीन को समझो। अब इस आयत में हम देखेंगे इतनी जामे आयत है कि मैं कहती सिर्फ इस एक आयत को लोगों तक पहुंचा दें तो नेकियों के कॉन्सेप्ट ठीक हो सकते हैं। हाल क्या है कि कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रहून, तीन जगह ये आयत आती है गालिबन कुरान पाक में कि हर गिरोह जिस काम पे वो उसी पे खुश है। इवन नेक लोगों ने भी नेकियां चुनी हुई हैं, कुछ कहते हैं सिर्फ जिहाद करो, जिहाद जिहाद जिहाद, सब काम छोड़ो चलो सब जिहाद पे चलो। दूसरा कहते नहीं जिहाद तो छोड़ो छोड़ो, आज तो है ही नहीं वो दौर, अभी तो मक्की दौर है, मदनी दौर नहीं आया। वो क्या कहता है तबलीग 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 तबलीग, सब छोड़ दो, बच्ची बीवी प्रेग्नेंट है जाने दो, हो जाएगा बच्चा ले जाएंगे नेबर तुम्हारी बीवी को, तुम जाओ तबलीग करो, बंद करो कारोबार, बंद करो दुकान, शादी की ज़रूरत नहीं। मैं किसी तबलीगी गिरोह का नाम नहीं कर रही, मैं एक सोच की बात बता रही हूँ। वो कहते हैं सिर्फ तबलीग करो, जैसे हमारे जैसे मेरे जैसे बंदे आपको कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ हर वक्त ही कहूँगी पढ़ो पढ़ो, जो बंदा जिस काम पर होता है उसको समझने लगता है ना, हालांकि मैं ऐसा कभी नहीं कहती, आप लोग ये ना समझे ये मैंने एक साइड में मिसाल दी है ना, लेकिन हर बंदा जिस दीन के काम को नेकी समझता है, कोई कहता है सिर्फ चैरिटी करो, चैरिटी चैरिटी चैरिटी। अल्लाह सुबहान ताला फरमाते हैं कि नेकी क्या है, मन आमन बिल्लाही। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कितने खूबसूरत तरीके से हम सबको बता रहा है कि नेकी का दरख्त लगता किस चीज़ से, पहले पत्ते नहीं लगेंगे, मन आमन बिल्ला, ईमान क्या है नीचे जड़ है। आप अल्लाह ने ज़िंदगी दी आपको और दुआ दूंगी कि आप वहाँ तक पहुँचें। 13वें पारे में सूरत इब्राहिम की आयत 28-29 से आगे एक पूरी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तैयिबतन का मसली कशजरतिन तैयिबतिन, कि एक कलमा तैयबा जो हम पढ़ते हैं जो पाक कलमा है उसकी मिसाल जो है एक दरख्त की तरह। तो वहाँ भी यही मिसाल दी गई कि नेकी पूरे एक रिचुअल का नाम है, एक छोटी चीज़ का नाम नहीं है। इस एक आयत के अंदर अल्लाह सुबहान ताला ने हमें कितनी खूबसूरत चीज़ें बता दी कि देखो नेकी शुरू किस चीज़ से होती है, पहले अल्लाह पर ईमान लाओ। आज दुनिया के मज़ाहब में नेकी का तसव्वुर कैसे है इसको भी देख लेते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ एक अदर मिसकॉन्सेप्शन भी है, और वो क्या कि हम अच्छे काम और नेकी के काम में फ़र्क नहीं कर पाते। लिखिए ज़रा इंग्लिश में लफ्ज़ बोलूँगी तो आसान लगेगा। एक लफ्ज़ होता है गुड डीड्स, लिख लें अपने पास, और कॉलम बना के दूसरी तरफ लिख लें राइटियस डीड्स। एक है अच्छा काम और एक है नेकी का काम, गुड डीड्स वर्सेस राइटियस डीड्स। क्या ये दोनों एक चीज़ का नाम है? नहीं, ये दोनों एक चीज़ का नाम नहीं है। अच्छा काम क्या होता है? जिसको लोग अच्छा समझें, मसला आप बिल्ली को खाना खिला रहे हैं सब अच्छा कहेंगे, गरीब यतीमों को खिला रहे हैं, कहीं से लाभ आ गया आपके जहाज़ जा रहे हैं वहाँ एड्स ले लेके मदद लेके। यानी अच्छा काम क्या होता है कि जो सबको अच्छा लग रहा होता है। फिर आप देखिए कि जो अच्छे काम होते हैं ना ये बंदे को सुकून देते हैं, ये इंसान की फितरत है कि वो नेकी करके अच्छा काम करके खुश होता है। आप किसी भूखे को खिलाएं खाना, आपको भूख लगी भी है लेकिन आप फील करेंगे कि आपका खाना वो भूखा खा रहा है तो आपको खुशी मिल रही है। ये मोमिन काफिर यहूदी नसरानी हर बंदे को मिलती है खुशी। आज आप देखेंगे नॉन मुस्लिम्स में चैरिटी की बहुत वेस है, और इस पॉइंट को आप समझ आएंगे ना तो आपका एक बहुत बड़ा और मसला भी समझ आ जाएगा। आप कहते ये बताओ मदर टेरेसा तो लेप्रसी के मरीजों में रहती थी, उसका क्या बनेगा? जानते हैं मदर टेरेसा को, कोड़ी के मर्ज थे ना, जो कोड़ के मर्ज होते हैं उनकी जाके देखभाल करती थी उनकी, मतलब उसने अपना डिवोट कर दिया था मरीज़ों के लिए। आप कहते हैं उसका बताएं क्या होगा? तो मदर टेरेसा का वो काम, मैं उसका नाम ले रही हूँ, वल्लाह ही मैं उसको जानती नहीं हूँ कि उसका अकीदा क्या था, और अल्लाह को पता है वो किस अकीदे पे मरी है, लेकिन सिर्फ ये आपको चूंकि पता था नाम तो मैंने ये नाम लिया है। लेकिन उसने अगर, या किसी को छोड़ दें टेरेसा को, आप कोई मिस कोई और ले लें, मिस कोई ऐसी बना लेते हैं। अब मिस रीटा हैं वो खूब खाना खिलाती हैं गरीबों को जाके, रोज़ देख पकाती हैं और शाम को जा खिलाती हैं। अब ये मिस रीटा हैं वो क्यों खिलाती हैं? ये गुड डीड है, उनको अच्छा लगता है। अल्लाह ने रहम के जज्बे रखे हैं। पीछे मैंने कह दी ये बात आपको, जैसे हर बंदे के अंदर ये तड़प है कुछ करे। अब वो मिस रीटा क्यों खाना खिलाती हैं, क्योंकि उस गुड डीड के नतीजे में सुकून भी मिला। मैंने आपको दो फ़र्क बता दिए ना, सुकून मिलता है गुड डीड्स के साथ, इसके बरक्स ज़रूरी नहीं कि राइटियस डीड्स के साथ आपको सुकून भी मिले। अभी इस आयत में हम पढ़ेंगे, एक लंबी लिस्ट है, जिहाद, किताल, हिजरत तक, कहाँ सुकून मिलता है इसमें। तो बंदा बेचैन होता है, कांटों पे सफ़र होता है, फिज़िकली आप बिल्कुल खुशी में नहीं होते, लेकिन गुड डीड सुकून बहुत देता है। आज जितना चैरिटी वर्क आपको ग्लोब में नॉन मुस्लिम्स की तरफ से दिखेगा ना, वो गुड डीड तो है, उसको राइटियस डीड में कैसे बदलना है, मन आमना बिल्ला, अल्लाह को मानो पहले। फ़र्क किसको समझ आ गया कि जब बंदा अल्लाह के लिए कोई काम करता है ना, इखलास, मुझे कल इससे बदला अल्लाह से लेना है, क्योंकि वल यौमिल आखिर आ गया साथ। मैं आज इन यतीमों को, गरीबों को, लेप्रेसी के मरीज़ों को इसलिए खिलाती पिलाती टेक केयर करती हूँ कि मेरा ईमान है इस बात पर कि अल्लाह कल यौमे आखिर पे मुझे इसका अजर देगा। तो ये कह सकते हैं कि गुड डीड चेंज टू राइटियस डीड्स। और जब ये नहीं है, अगर एक बंदे ने जन्नत मांगी नहीं, उसका यौमे आखिर पे ईमान ही नहीं कि मरने के बाद जन्नत मिलनी है, आप क्यों ज़बरदस्ती उसको जन्नत में भेजना चाहते हैं। इस जुमले की जद पे हर वो गैर मुस्लिम आता है जो बड़ी बड़ी नेकियां आज कर रहा है, चैरिटी फाउंडेशन, कुत्तों के हॉस्पिटल, जानवरों के, इंसानों के, बिल्लियों के हकूक, गुड, वेरी गुड, करने दीजिए, दे आर डूइंग गुड डीड्स। बट इफ़ दे वांट टू डू द राइटियस डीड्स, देन मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फिर अल्लाह को भी मानो, फिर इसको भी मानो कि मरने के बाद अल्लाह ताला ने एक जहान बनाया है जहाँ पे तुम्हारे ये सारे काम होंगे, और वहाँ अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ेगा, वहाँ लेके जाएगा, और इस तरीके से तुम वहाँ जाके अपने आप को देखोगे कि अल्लाह के पास तुम्हारी उन नेकियों का अजर रखा हुआ है। अगर ये नहीं है तो हर काफिर की नेकियाँ दुनिया में उसको सुकून भी दे गई। दूसरा क्राइटीरियन भी हिफ्ज़ कर लें अब, कि लोगों को भी वो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, लिहाजा ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहाना ताला क्या करते हैं, लोगों में मारूफ कर देते हैं, लोग रोत खुश होते हैं। जैसे हातिम ताई एक किरदार है, लेकिन रियल में एक अरब का शख्स था। अल्लाह के नबी से एक मौके पे पूछा है आपकी बीवी ने कि अल्लाह के नबी, क्या उसने इतने भूखों को खाना खिलाया? कहते उसके घर के बाहर हर वक्त देख पकी रहती थी, चढ़ी रहती थी, तो क्या उसको ये सारी नेकियाँ, चैरिटी, मेहमान नवाजी फ़ायदा देगी? आपने कहा, आयशा, उसने तो कभी एक दफ़ा नहीं कहा अल्लाह ताला के मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो ये कैसे हो सकता है भाई? आपने कहीं जाना ही नहीं चाहा, आप जाना ही नहीं चाहते, कोई ज़बरदस्ती क्यों आपको वहाँ भेजे? जो मानता ही नहीं आखरत को, जो जन्नत को नहीं मान रहा, जो कल को नहीं मान रहा, उसको तो छोड़ने चलें, गैर मुस्लिमों को छोड़ें, अपनी बातें कर लेते हैं कि हर नेकी जो होती है ना ईमान लाने के बाद भी, वो नेकी हमेशा नेकी नहीं रहती। जब नेकियों के अंदर तासुब आ जाता है, जब नेकी के अंदर दिखावा आ जाता है, रियाकारी आती है, तो वो फिर राइटियस डीड्स जो हैं वो गुड डीड्स में बदल जाते हैं। आज इसको बाद में बैठेंगे ना तो आप तकाबुल करके देखेंगे ना कि मैं कोई काम क्यों करूं कि वो अल्लाह को पसंद आए, वो मेरा राइटियस डीड हो गया, क्योंकि अल्लाह को दिखाना है ना। ये दो जुमले याद रखें, गुड डीड लोगों को पसंद आता है, राइटियस डीड्स अल्लाह के लिए करता है बंदा, अल्लाह को अच्छा लगता है। गुड डीड्स के बाद सुकून मिलता है, प्लेयर मिलता है, रिलैक्सेशन है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है। इसके बरक्स ज़रूरी नहीं कि हर राइटियस डीड के बाद फौरन आपको बहुत पीसफुल भी हो। आपके तो जिस्म पे तीर लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, आपको तो चोटें पड़ रही होती हैं, आपकी तो आंखें रो रही होती हैं कि मैं इतना कुछ छोड़ के जा रही हूँ, इतना कुछ छोड़ रही हूँ अल्लाह के लिए, लेकिन आपको यकीन होता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने इसका मुझे कल बदला देना है, मना मना वल बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फिर उसके बाद इंसान वो काम करके खुशी महसूस करता है, फिर जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि ये करोगे फिर होगा, और जो सिर्फ तासुब के लिए, जो सिर्फ इसलिए करे कि लोग मेरे नाम से जुड़ जाएं, मेरे गिरोह से जुड़ जाएं, मेरे साथ ये हो जाए, तो याद रखे बात नहीं होती। आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद आप समझ सकेंगे। आप देखिए कि आप पार्सल एक भेजते हैं, वो पार्सल कहाँ पहुँचता है जिसका आपने एड्रेस लगाया। इमेजिन करें, आपने दो गिफ्ट्स तैयार किए हुए थे दो डिफरेंट जगहों पर भेजने के लिए, एक में आपने अपनी माँ के लिए गर्म कपड़े, अच्छे उनकी उम्र के मुताबिक जो भी उनकी दवाइयाँ चीज़ें थी वो रखी हुई थी, और दूसरा आपका पैकेज जो था उसके अंदर आपने बहुत फैंसी चीज़ें जो आपने अपनी नंद को भेजनी थी या आपने किसी अपनी भाभी को भेजनी थी, खूब फैंसी आइटम भेजी। दोनों एक ही जितने थे वजन में, दोनों को एक ही प्रायोरिटी मेल के साइज़ के डब्बे में रखा, दोनों एड्रेस भी पास थे। गलती से आपने क्या किया, एड्रेस दूसरा लिख दिया। आप मुझे बताइए कि आपकी माँ का पैक कहाँ पहुँचेगा, आपकी माँ को पहुँचेगा? आप पोस्ट ऑफिस में जाएं, बाद में पता चले अम्मी के बेटा ये क्या भेज दिया, ये मेरी उम्र है लिपस्टिक लगाने की। और बहन कहेगी वो भी नाराज़ कि भाई तुमने मुझे बुड्ढी समझा था जो मुझे सारे ही ऑफ वाइट कलर के स्वेटर कपड़े भेज दिए। आप रोए चीखे कहने अल्लाह के लिए नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहेगा भाई देखो मेरे पास है, वो दिखा भी दे आपको वेब कैम पे। आप कहते हैं पकड़ती हूँ अब ज़रा गाड़ी की चाबी और जाती हूँ पोस्ट ऑफिस, सर फड़ के आती हूँ इनका। वो कहेंगे भाई क्या हुआ मसला? आप कहना आपने पैक ही गलत कर दिए, मेरी माँ का मेरी बहन को और उसका इधर भेज दिया। कहेंगे किधर है भाई, कहाँ है, जो एड्रेस लिखा था वो क्या? वो कहेंगे किधर, अब एड्रेस भी आपने देख लिया, आपकी गलती। आप कहें नहीं मेरी नीयत तो ये थी ना कि मेरी माँ को ये पहुँचे, और मेरी नीयत थी ना कि ये मेरी नंद को पहुँचे, तो कोई देगा क्लेम, मिलेगा आपको? तो याद रखे कि जिस तरह किसी पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ एड्रेस जो होता है वही चीज़ पहुंचती है ना, तो एड्रेस इज़ इक्वल टू आवर नियत, इंटेंशन, इरादे। हम सब यहाँ बैठे हैं इस वक्त कुरान के लिए, पढ़ सभी रहे हैं, सुन भी रहे हैं आप लोग भी। चले मेरा आपसे डिफरेंस है, आप सब तो एक ही काम कर रहे हैं ना, सुन रहे हैं। अल्लाह और जमा के रखे आपको। मैं कहती हूँ जो इनके दिल ना कुरान से हटें, और जो आज नहीं आए मुझे पता है वो भी तड़प रहे होंगे क्योंकि उनकी मजबूरियाँ होंगी, हालात होंगे ना। तो जो हमारी नियत होगी ना, कल क़यामत के दिन हम वहीं पहुँचेंगे। ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं है, मेरे और आपके अपने दिल में 100 नेकी के इरादे हों, जो कर रहे हैं वो दिखेगा। लोग कहते हैं अच्छा इसी कॉन्सेप्ट को मिस कॉन्सेप्ट में जब बदला गया ना तो उसकी वजह से बहुत सारी हमारे यहाँ खराबियाँ पैदा हुई। मसलन आप देखिए कि इंसान के अंदर जज्बात भी बहुत होते हैं, आप नेकी करना चाहते हैं, राइटियस डीड। अब नेकी को याद रखिए, गुड डीड नहीं, राइटियस डीड। आप राइटियस डीड करना चाहते हैं, आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, जज्बाती हैं। मिसाल है कि आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत बड़ी हो गई, और अल्लाह करे सही हो, लेकिन हद से बड़ी हुई मोहब्बत भी बंदे को नेकी की राइटियसनेस से उठा के गुड डीड पे ले आती है। मसलन कुछ लोगों को अल्लाह से इतनी मोहब्बत हुई, उन्होंने कहा कोई घर नहीं हमें चाहिए, शादी नहीं करनी, पकड़े अपने आप को और ले गए जंगलों में, राहब बन गए, रहबानियत पैदा हो गई, जंगलों में गए, देहातों में गए, वहाँ गए। कुछ को इतनी मोहब्बत हो गई जीसस गॉड से, खुदा ना खास्ता, कि वो कहते हैं कि हमने अपने आप को नन बना दिया, हमें शादी नहीं करनी, हम जाके तो बस प्रीच करेंगे, और कुछ प्रीस्ट बन गए, एक हद पे गए, जज्बात में भड़ गए, खुदा की मोहब्बत में। जाके कहानियाँ पढ़ें, किताबों की किताबें आपको मिलेंगी कि जिसमें नंस और प्रीस्ट की गंदे किरदार आपको दिखेंगे, फितरत से दूर हुए ना। तो याद रखें कि नेकी तब भी नेकी नहीं रहती जब जज्बात में हद से गुजर जाती है। जैसे पानी हदों के अंदर रहता है ना तो वो फ़ायदेमंद होता है, वही पानी ज़रा ऊपर उबलता है ना, आपकी केतली में पानी उबल रहा है तो आप चाय बनाएंगे, और ज़रा जोश ज़्यादा होगा वही केतली का पानी बाहर गिरेगा और आपकी मशीन भी जलेगी, आग लगने का भी डर है। नेकी करनी है जज्बात के अंदर रहकर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। आज जो जीसस गॉड का नज़रिया दिखा आपको, ईसा खुदा है, ये क्या है, ये नेकी अल्लाह की मोहब्बत में बढ़ा हुआ दर्जा। इसी तरह दूसरे दर्जे पर रसूल को ले आते हैं, लोगों को रसूल से मोहब्बत बढ़ी है, सबको मोहब्बत है, वो कहते नहीं हमें ज़्यादा है। रसूल की मोहब्बत में इतने गलूफ में चले गए कि रसूल को उठा के बशरियत से नूरानियत पे रख दिया, कहा ये तो नूरों में नूर अल्लाह, ये नूर का बना हुआ है। और मोहब्बत इतनी हुई कि उन्होंने वही बात है कि रसूल को खुदा भी बना दिया, रसूल से मोहब्बत इतनी हुई कि वो काम भी करने शुरू कर दिए जो रसूल ने नहीं किए। आज जितनी बिदात है ना दीन के नाम पर, पिछले सबक में हम जो कहानियाँ पढ़ रहे थे ना और आखिर में सुनते हैं तो लोग कहते हैं हरज क्या है, फ़र्क क्या है, असल में वो नेकी का उबलना है जोश में। कभी भी कोई नात जिसमें शिरकिया शेर आप देखें, कभी ना सोचिए किसी ने बदनीयती से लिखा है, आप कह लें वो उबलती हुई नेकी है। जैसे जोश आता है तो पानी बाहर गिरता है ना, इतनी मोहब्बत नबी सल्लम से हुई कि कुछ पकड़ के उनको खुदा का कोना दे दिया कि खुदा को अहमद, अहमद को खुदा कर दो। हाँ वही जो आसमां पे था खुदा, वो अहमद बन के उतर आया, سب سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، کعبے کا بھی کعبہ میٹھے نبی کا روزہ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی میٹھے کہتے تھے نبی چکے تھے، یعنی سوچیے یہ محبت کی باتیں ہیں۔ یعنی جب بھی لوگ ریشو پرپورشن سے غلطی کریں گے نا، پہلے بھی آپ کو کئی بار یہ مثال دے چکی ہوں کہ صرف چائے ہی بنانے میں آپ ایک چمچ چینی کے بجائے 10 چمچ ڈال دیں تو وہ چائے نہیں وہ گٹا بن جائے گا، میٹھی نہیں کڑوی ہو جائے گی۔ کافی کے 1 چمچ کے بجائے 6 چمچ ڈالیں کافی پاؤڈر کے 1 کپ میں، وہ خلق سے نہیں اترے گا۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ نیکی پہ اس ریشو پرپورشن پہ نہیں آتے، اس کا بیلنس نہیں رکھ پاتے، کوئی ایک طرف چل پڑتا ہے کوئی ایک طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے قید کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، پھر بات ہوگی۔ جتنا دیا نبی آئے اس لیے تھے، کتنا دین چاہیے، کون سی نیکی کرنی ہے، کتنی کرنی ہے اور کب کرنی ہے، پیچھے آپ کو یہ 3 ٹپس لکھائی تھیں، یاد ہے نا؟ نبی یہ بتانے آتا ہے نیکی ہے کیا، کتنی کرنی ہے اور کب کرنی ہے۔ پوری ریسیپی بک ہم نے شیئر کی تھی پچھلی ایک مثال میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ تم اپنی مرضی سے ڈھول بجا لو کو نیکی ہے، تم تالیاں بجاؤ اور اونچی اونچی اللہ کے نام پہ قصیدے گاؤ کو نیکی ہے، یہ کس نے بتایا تمہیں؟ آج کی جو قوالی، نام سے بھی سمجھ گئے ہوں گے آپ، یہ کس نے گائی؟ کبھی ایک حدیث میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی بیٹھے اور ابو بکر اور عمر اور عثمان بیٹھے اور نعوذ باللہ، کہتے ہوئے بھی زبان گندی ہوتی لگتی ہے، کہ اللہ کے نبی قوالی گا رہے تھے اور ابو بکر پیچھے ڈھول میں اور تالیاں بجا رہے تھے۔ امیجینیشن میں بھی آتا ہے؟ کبھی آپ کے امیجینیشن میں آتا ہے کہ 313 صحابہ جو بدر میں گئے، جو بہترین صحابی ہیں، وہ سارے جمع ہوئے، سب نے سبز رنگ کے جھنڈے لیے، عید میلاد النبی کا جلوس نکال دیا؟ آتا ہے تصور میں؟ شاید آپ لوگوں نے بھی سیرت نہیں پڑھی، میرے تو نہیں آتا۔ چلے ان کو چھوڑ دیں، آپ امام چاروں اماموں کا تصور میں لائیں کہ ایک امام بیٹھے ہیں وہ ڈھول بجا رہے ہیں اور دوسرا تالیاں بجا رہا ہے، کوئی راگ اور رنگ پہ سر لگا رہا ہے۔ یہ آج کا جو دین ہے نا، یہ تو یقین کریں نقلی دین تو چھوڑیں، اس پہ تو آج اللہ کا نظام آ جائے تو جیل میں ہو جائیں گے ہم سارے، کھوٹے سکے چلا رہے ہیں ہم، اسی لیے نہیں چاہتے ہم قرآن پہ آئیں۔ اسی لیے اس کو چھوڑو، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف میں آیت آئے گی کہ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھاتے تھے تو مکہ والے لوگ جو تھے پاس آ کے سیٹیاں بجاتے، وسلنگ کرتے، کبھی کلپنگ کرتے، مقام و تصدیح کا لفظ آتا ہے، کہتے اتنی خاموشی سے لوگ بات سنتے ہیں، دل میں اترتی ہے تو آ کے ڈھول بجاتے، آوازیں لگاتے، اس کو عبادت کہتے۔ آج بھی ہندو دھرم میں تالی بجانا عبادت کا حصہ، ان کے بھجن جو ہیں وہ ان کے گانے، ان کی عبادت ہے۔ آج بھی جیسس کی محبت میں جو سانگس آتے ہیں کرسمس پہ، یہ وہ آپ پوچھیں تو جی ذرا کسی کو 25 دسمبر کو، وہ کہے گا میرے سے بڑا نیکی کا کام ہی کوئی نہیں کر رہا۔ تو کون بتائے گا؟ رسول بتائے گا۔ اسی لیے پھر آگے لمبی لسٹ دی جا رہی ہے کہ اچھا بھائی تمہیں آج یہ تو یقین ہو گیا کہ نیکی اپنی مرضی سے نہیں ہونی، اور نیکی ہونی بھی وہی ہے جس کو اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر وہ نیکی ہے کیا؟ وہ کیسے پتہ چلے گی؟ وہ وہی سے پتہ چلے گی۔ اب اگلی چیزوں کو پہلے امیجینیشن میں لائیں کہ ہمیں یہ بات یقین ہو گیا کہ نیکی اللہ نے بتائی ہے اور آخرت تک اس کو لے کے چلنا ہے، دنیا میں اس کی صرف فائدے نہیں لینے دینے۔ تو اب کریں کیا؟ پتہ کیسے چلے؟ وہ پتہ چلتی ہے وحی سے، وحی، ریولیشن کہتے ہیں انگلش میں، وحی آتی نبی پر ہے۔ پہلے میری بات کو سمجھیں پھر آیت پہ دیکھیے گا، وحی آتی نبی پر ہے، لاتا فرشتہ، اور بعد میں وہ ایک کتاب کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ان تینوں کو آیت کے اگلے حصے میں بتا دیا، ول ملائکتی ول کتابی ول نبی جین، یہاں پہ بات پوری ہوئی کہ نیکی ہے کیا، فرشتے کے ذریعے آئے گی، اور یہ کون سے فرشتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہر نبی کے پاس وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے، اور ساتھ کبھی کچھ دوسرے فرشتے آتے تھے کچھ اور حالات میں، جب قوموں پہ عذاب آتا ہے تو کہا فرشتوں کو مانو۔ یہاں سے آپ دیکھیں تو ایمان مفصل بھی ہے، یہ بعض لوگ ایمان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و رسلہ و کتبہ، ہاں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ ایمان نہ لائیں نا کہ فرشتے موجود ہیں تو ہمارا ایمان پھر بھی ادھورا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے فرشتوں کو، ایسے ہی ہے کوئی، جرمز کو مانتے ہیں حالانکہ وہ دکھتے نہیں، فرشتوں کو نہیں مانتے، ہاں ہمارا ایمان ہے، اس پہ ڈیٹیلز بعد میں کریں گے، لیکن یہاں صرف یہ جملے نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، فرشتوں کو نہ مانے تو بھی اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز ڈاؤن کر دیں گے تو ایمان گر جائے گا۔ فرشتے کے ذریعے آئی، ول کتاب، یہ کتاب کیا ہے؟ اسم جنس ہے، सारी किताबें, हर दौर की, या किताब से मुराद है शरीयत, हर दौर में जो शरीयत आई अपने वक्त के नबी के पास आई, कल तौरात थी, फिर इंजील हुई और आज कुरान है, हर दौर की हर किताब उसको मानना पड़ेगा। वन नबी जीन, सारे नबी, एक नबी नहीं, सारे अंबिया कराम को मानोगे। यहाँ तक आप देखिए कि दीन का पहला हिस्सा पूरा हुआ, इतनी खूबसूरत एक्टिविटी बन सकती है इस एक आयत पे। ईमान के ना मुख्तलिफ हिस्से हैं, यहाँ तक पहला हिस्सा पूरा हो जाता है जिसका ताल्लुक अकायद के साथ है, अकीदा बुनियाद है। छोटी सी एक और मिसाल दे के फिर आपको थोड़ा आगे लेके चलूँगी। आप देखिए कि जैसे मैं आपके सामने अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं एक इंसान हूँ ना, ये देखिए ये क्या है, मेरे हाथ है ना, मेरी आंखें आपको दिख रही हैं, नाक दिख रहा है, कान दिख, ये सब कुछ मिले तो मैं बनी, ठीक है। अब बिलफर्ज को मेरा हाथ यहाँ से कटा हुआ अलग का हाथ पड़ा हो, हाथ मेरा अलग कर दे कोई, क्या ये हाथ अकेला वहाँ पड़ा हुआ मेरे लिए वो काम कर सकता है जो मेरे साथ लगा हुआ कर रहा है? नहीं, जिस्म के सारे हिस्सों का ये हाल है। जब ये सारे छोटे छोटे हिस्से अपनी जगह जुड़े, मिल गए, मेरे साथ जुड़ी, ये आंखें जुड़ी, तो मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे हाथों को काट के अलग कर दें, नाक को अलग कर दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये सब मिलके मेरा एक वजूद बने, तो नहीं बनेगा ना। इसी को अब इमेजिनेशन में लें कि जब हम कुछ कामों को अलग करके नेकी बनाते हैं, किसी ने नेकी का हाथ ले लिया, किसी ने कान ले लिया, तो वो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, यानी जो सिर्फ अखलाक सिखा रहे हैं लोगों को बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एक नेकी का जिस्म नहीं बना रहे। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हुई, तो नतीजा क्या निकला कि ऐसे लोगों ने नेकी का अधूरा तसव्वुर लिया। आप देखिए कि कोई इंसान जिसको आप हैंडीकैप कहते हैं, क्यों कहते हैं, कभी सोचिए हैंडीकैप लोगों का क्या मसला होता है, इन्हीं जिस्म के हिस्सों में कहीं नक्स होता है ना, तो वो बेचारे दुनिया की दौड़ से पीछे दिखते हैं ना। इसी तरह याद रखिए, हैंडीकैप दीन है आज के दौर में अक्सरियत के पास। किसी का हाथ फाले जद है, किसी की आंखें, किसी का नाक। बचेंगे हम कब, जब पूरे की पूरी नेकी का एक रूह और जिस्म के साथ तसव्वुर सही करेंगे, और इसी का नाम जिहाद है, इसी का नाम मेहनत है। अल्लाह ताला यही दिखाता है कि देखो तुम नेकियां करना चाहते हो तो पहले अपने अकीदे ठीक करो। लोग कहते हैं अकीदे पे बात ही ना करो, अकीदे का बिगाड़ अमल के बिगाड़ की सूरत में दिखता है। मिसाल आपको देती हूँ, जिस्म के अंदर कैंसर हो, अब ये जिस्म बिगड़ गया ना अंदर, अब इसका असर थोड़ा थोड़ा आपने देखे कि कैसे दिखता है। खुदा ना खास्ता किसी को ऐसी बीमारी हुई हो, या अगर आपने देखा हो तो, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि आहिस्ता आहिस्ता फिर उनके सारे बॉडी पार्ट छोड़ देते हैं, काम करते हैं। सुनी भी बात कि अब इनका कैंसर जो है वो स्टमक तक पहुंच गया, अब खाना नहीं हजम हो रहा, क्या हुआ इसका असर गुर्दों पे पड़ गया तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़राब हो गया, सारे जिस्म पे वो हमले करता है कैंसर का मर्ज होता है। और एक वक्त आता है कि जिस दिन कैंसर का जर्म जो है वो दिल पे हमला करता है, फिर बंदा पूरा हो गया। अब इसी को इमेजिनेशन में लाएं कि अकीदे का बिगाड़ बंदे के जिस्म को, नेकियों का जिस्म, अब आप यहाँ एक एक्टिविटी बनाएंगे, नेकी का एक जिस्म बनाएंगे, इसके अंदर रूह है, इसके अंदर भी बैकबोन है, फ़राइज़, जैसे दरख्त की मिसाल आपको दे सकती हूँ कि दरख्त का जो तना होता है वो उसका अकीदा है, जड़ें जो हैं वो अल्लाह की मोहब्बत है, अकीदा है, फिर जो स्टैम्प होता है उसके अंदर वो फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है, नमाज, रोज़ा, हज, फिर ऊपर जो उसकी ब्रांचेस होती हैं ये मामलात हैं, पत्ते अखलाक के हैं, फल जो लगता है वो ईमान के की मिठास का फल है ना। तो ये सारी चीज़ें जब अपनी जगह पे होती हैं, कब, जब अकीदा ठीक होता है। अकीदे में बिगाड़ आएगा तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि सबसे पहले अपने अकायद को दुरुस्त करो। अकीदा ठीक होगा ना, छोटे छोटे अमल भी इंशाल्लाह कल काम आ जाएंगे। अल्लाह हमसे हमारी बड़ी बड़ी इबादत नहीं मांगेगा, हमसे बड़े बड़े नफ़ल और हमसे बड़े बड़ी चीज़ों को नहीं लेगा, लेकिन अगर अकीदे में बिगाड़ हुआ ना तो बड़ी बड़ी नेकियाँ ज़ाया हो जाएंगी। जैसे कैंसर के मरीज़ को आप जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक खिलाएं उसको लगती नहीं है, लेकिन अंदर सेहत होती है ना, जिन बच्चों के देहातों में पलने वाले सीधे सादे माहौल जो गरीब लोग होते हैं, चूँकि अंदर सेहत है ना, तो वो सिर्फ रोटी के ऊपर मांस थोड़ा सा मक्खन रख देती है तो बच्चे को सेहत बन जाती है उसकी। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे दिल खुले होते हैं ना, हम बिल्कुल सेहतमंद इंसान होते हैं, तो फिर हमारी छोटी छोटी चीज़ें दुरुस्त होती हैं। तो इसी में अगला हिस्सा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वह आतल माल अला हुब्बिही, और वो देता है माल उसकी मोहब्बत में। अब हुब ही किसकी मोहब्बत में, इसकी दो तफसीरें हैं। नंबर एक के माल की मोहब्बत है, फिर भी माल देना है, क्योंकि अगर माल से मोहब्बत ही ना होगी तो देने में तकलीफ़ क्या होगी। आप सोचें अगर हमें माल से मोहब्बत ही ना हो तो सदका खैरात का कोई सवाब है? नींद से मोहब्बत ही नहीं है तो फजर की नमाज़ पढ़ने में क्या मुश्किल है भाई? ठीक है, तो मोहब्बत है माल से, और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाली आयतें सूरह आल इमरान की शुरू में ही हैं कि ज़ुज्जिना लिन्नासि हुब्बुश्शहावाति मिनन्निसा वलबनीन वलकनातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वलफिद्दा, कि हमने लोगों के लिए खूबसूरत बना दी औरतों की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, घोड़ों से उनको प्यार है, गाड़ियों से उनको प्यार है, सेल फोन से उनको प्यार है, हैं, और आजकल के तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं आतल माल अला हुब्बी, है तुम्हें मोहब्बत माल से लेकिन दो उसकी मोहब्बत के बावजूद। दूसरा इसका मानी क्या है कि ही की ज़मीर यानी ही का नस्बत अल्लाह की तरफ जाती है, तो फिर क्या मानी बनेगा? अल्लाह की मोहब्बत में माल देते हैं, यानी बड़े होने के लिए नहीं कि हमारी तस्वीरें छपें, टीवी वालों को दिखाते हुए साथ साथ फिर सिलाई मशीनें बट रही हैं, चेक्स जो हैं वो पूरे मीडिया को जमा करके दिए जा रहे हैं चैरिटी के, नहीं, फिर अला हुब ही अल्लाह की मोहब्बत में माल देंगे। और जब माल इंसान देता है ना तो फिर दिल खुलता है। याद रखे वही अल्लाह के रास्ते में माल देगा जिसके दिल में सच्ची मोहब्बत होगी। ये जो लफ्ज़ सदका है ना, ये सिद्क से है। हम कहते हैं ना ये चीज़ सदके में दे दो, क्या मतलब? किस चीज़ का सिद्क है? कि बंदा इस बात में सच्चा है कि मुझे रब से प्यार है। मसलन हम दुनिया में जिस चीज़ के बारे में सीरियस होते हैं ना, हम उस पर पैसा लगाते हैं। 5-5 हज़ार का लोग सेलफोन भी लेते हैं, आप ना मांग लीजिएगा अपने घर वालों से जाके, लेकिन मैंने सुना है कि लोग लेते हैं इतने का भी। यकीन था ना कि ये जो फ़ोन ले रहे हैं इसकी ज़रूरत है, ये अहम है, उससे प्यार तो ले लिया। अल्लाह के रास्ते में हम वही माल लगाएंगे, अपनी ज़ात पर भी, किताबों पर, अल्लाह के दीन को प्रमोट करने में, जब हमें यकीन होगा कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है। फिर इस पर बात तो इंशाल्लाह आगे तीसरे पारे में बहुत सारी होती रहेगी। अब देना किसको है? तो फरमाया पहला हक है ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों को दो, करीब वालों को। ये नहीं कि दूसरे मुल्कों में तुम डोनेशंस के चेक्स भेज रहे हो, वहाँ के लोगों की तुम मदद कर रहे हो, और अपने ही तुम्हारे घर के करीबी जो रिश्तेदार हैं तुम्हारे, अपने वो भूखे मर रहे हैं, उनकी तुम्हें फ़िक्र नहीं है और दूसरों की तुम्हें फ़िक्र है, हाँ। फिर वल यतामा, पिसे हुए लोग, बेचारे जिनके माँ बाप नहीं हैं या बाप नहीं हैं, जो अपनी टेक केयर नहीं कर सकते, ऑर्फन्स, बहुत ही महरूम तबका होता है। यतीम लफ्ज़ को आगे जाके कहीं आपके लिए खोलूँगी इंशाअल्लाह ताला अलग से कि इसके रूट में क्या छुपा हुआ है, हाँ। फिर इसी तरह आप देखिए कि इतने कमज़ोर होते हैं कि अपने जीने का इंतज़ाम नहीं कर सकते। फिर वल मसाकीन, मिसकीन, मिसकीन लफ्ज़ कौन होता है? जो अपनी ज़रूरियात ना पूरी कर सके। इंग्लिश में आप कह लें हैंड टू माउथ, कभी हाथ नंगे तो कभी मुँह भूखा, हाँ, कपड़े नहीं है, खाना है, बच्चों की फ़ीसें पूरी कर दी तो खाना नहीं है, जूते ले लिए तो अब टोपियाँ नहीं हैं, मौसम बदल गया तो पिछले कपड़े छोटे हो गए, यानी एक तरफ से खींचते हैं तो दूसरी तरफ पूरा नहीं होता। सफ़ेद पोश किस्म के लोग, इनकी भी डिटेल्स आगे हम जाके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर वबन सबील, आपने फरमाया कि मिसकीन वो नहीं है जो एक एक लुकमे के लिए लोगों के पास जाता है, ये वो बंदा होता है जो बहुत अपना भरम छुपाता है, अपने आप को दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करता। सकना से जैसे वक्त ठहर जाता है ना, इस तरह मिसकीन को भी लगता है कि हाय महीना इतना लंबा हो गया, कब पूरा होगा कि जाके फिर महीने की तनख्वाह आएगी, इस किस्म के हालात के शिकार लोग। फिर वबन सबील, मुसाफिर, इबन कहते हैं बेटे को, सबील कहते हैं रास्ता, तो अरब लोग जो काम कोई ज़्यादा करता था ना उसको उसका बेटा कह देते थे, तो रास्तों का बेटा यानी अक्सर सफ़र में रहने वाला, फ्रीक्वेंटली फ्लायर कह लें आज के दौर में, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर जो होते हैं ना, फ्लायर्स जो लोग होते हैं फ्लाई करने वाले, बस दफ़ा सफ़र में जेब कट जाती है फिर आप उसको भी देना पड़ेगा आपको, बस दफ़ा सफ़र में वैसे ही पैसे कम लगते हैं, घर में तो खुले आ रहे हैं अभी ये जा भी रहे हैं, लेकिन सफ़र में बंदा एक लिमिटेड अमाउंट साथ लेके जाता है तो फिर गिन गिन के लगाता है कि अच्छा अभी इतने दिन है, अच्छा अभी इतने दिन का किराया देना है, अच्छा अभी इतने दिन का खाना भी लेना है, तो वो कैफियात हो सकती हैं। फिर वसाइलीन, सवाली, ये कौन से होते हैं? इससे प्रोफेशनल बैगर्स मुराद ले सकते हैं आप किसी हद तक, मतलब बैगर्स तो आप कह सकते हैं लेकिन प्रोफेशनल बैगर्स नहीं, कि जो दूसरों के लिए कमा रहे हैं। सवाल कर लिया, जैसे कोई इल्म का सवाल ही होता है, इस तरह पैसे का सवाल ही बन जाता है। कोई ख़ुद मांग ले तो ना ना करे। और अहदीस इन सब पे बहुत मौजूद है, और ये टॉपिक पूरे कुरान में हम पढ़ेंगे। यहाँ चूँकि एक साथ सारा आ रहा है तो हम एक एक को अलग नहीं देख रहे, लेकिन इस पर अलग से लेक्चर्स भी मौजूद हैं। एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि उनको सवाल करने वालों को पीछे ना डालें। अल्लाह के नबी से कोई मांग लेता था, आपने कभी उसको खाली नहीं छोड़ा दिया। थोड़ा दे दें, स्माइल दे दें, पैसे नहीं है एक सेब दे दें, एक ऑरेंज दे दें, निकाल के घर में बाहर थे तो कुछ भी जेब में था दे दें, लेकिन छोटी सी चीज़ दे दें। वफिर रिकाब, और गर्दनों को आज़ाद कराने में, रिकाब जो है ना ये रकीबा से, ये गर्दन छुड़ाने को कहते हैं। इससे मुराद क्या है? ऑफ़ कोर्स प्रिजनर्स, जो उस दौर में कैदी होते थे, जंगों में लोग आ जाते थे, बाज़ दफ़ा प्रोफेशनली बैगर्स थे, बाज़ लोग फैमिली वाइज ही ख़ानदान ग़ुलामा, जैसे एक मारूफ है नाम। आज के दौर में ये सब नहीं दिखता, क्योंकि आज हमें गुलाम वो नहीं दिखते कि जिनको पैसे दे के दे। आज तो पूरी पूरी कौमें बिकी हुई हैं ना, वो स्लेवरी। आजकल आप कह सकते हैं कि नेशनल स्लेवरीज तो है, इंडिविजुअल स्लेवरी की मिसालें कम है, लेकिन जैसे कोई किडनैप कर देता है, अगवा करता है, अगवा ब्राय तावान, वो इसमें आएगा। प्रिजनर्स, बाज़ लोग जेलों में पड़े हुए हैं, सिर्फ उनके पास बेल के पैसे नहीं हैं कि वो दे के बाहर आ सके। बाज़ लोग सिर्फ़ कुछ सौ रुपये ना होने की वजह से जेलों में होते हैं। तो कोई भी ऐसे कैदी जो जेलों में पड़े हों, जो किसी मतलब जुल्म की वजह से चले गए हों, या लोगों ने गलत तरीके से उनको भेजा, तो उन पे भी खर्च करना। अब बात आती है वाकाम मसला। आप देखें कि आतल माल से लेके फिर रिकाब तक दीन का दूसरा रिचुअल था, जिसको आप मामलात कह सकते हैं, हुकूकुल इबाद। ये एक सेकेंड कैटेगरी है रिलीजन की। दीन एक ऐसा नहीं कि एक डब्बे में सब कोई डाल के दे दिया है कि मीठा खट्टा नमकीन सब एक जैसा हो गया। कभी खाना कहीं से लाएं तो आप सारी चीज़ें मिक्स हों तो आपको किसी का भी नहीं मज़ा आता, मीठा खट्टा ठंडा मिल गया। पोर्शंस है ना, जैसे आपके बॉक्सेस में पोर्शंस बने होते हैं, इसी तरह अल्लाह ने दीन को बड़ा अच्छा कन्फाइंड दीन हमें दिया है। और बंदा मोमिन को कम से कम इतना इलम तो हो, जाके पूछिए आज 10 लोगों को जो ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं पैदाइशी मुसलमान होने के नाते, कि उन्हें बताएं कि दीन के चार बुनियादी खाने कौन से हैं, तो शायद जज्बात में आके ये कहेंगे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। बहुत कम को पता होगा कि अकायद, मामलात, अखलाकियात कोई जानते भी नहीं हम लोग। मैं कहती हूँ कैसे भूल पाने से ज़िंदगियाँ गुजर गई, और हमारी भी गुजर रही थी अच्छी भली, ये हम किस मुश्किल में आ गए कि अब एक एक बात सुननी पड़ रही है और याद रखनी है। लेकिन आपके दिल गवाही देते हैं ना कि जानने वाला और अनजानने वाला बराबर नहीं होता। और जो लोग ये सारी चीज़ों को छोड़े बगैर दीन फैलाते हैं ना, वो दीन के नाम पे मरगोला ही बिलाते हैं। पता कुछ भी नहीं होगा, बस कहेंगे चुप, और अपनी कम इल्मी या कम अमली का सबूत ये होता है कि गुस्से में आ जाओ और आगे से बात का जवाब ना दो और अगले को सेटिस्फाइड ना करो। जबकि अल्लाह की किताब अंदर की तहें तक हमारी खोल देती है कि ये यहाँ है, ये वहाँ है। अब यहाँ से आप देखिए कि व अकाम सलात व आत ज़का, अकामत सलात में ख़ास तौर पे अब फ़राइज़ की बात हो रही है, क्योंकि आगे ज़कात की भी बात है। ये बुनियाद दीन का इबादत का हिस्सा होता है, इबादत। इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और किसी हद तक आगे जाके हम इसमें अगली जगह भी देखेंगे कि जिहाद की भी बात आती है, कि फिर ज़कात भी दो। आप देख रहे हैं कि अब इनका तस्करा हुआ है। एथिक्स यानी पहले रूह पैदा करो फिर जिस्म बने। बच्चे माँ के पेट में होता है ना, तो फोर्थ मंथ में उसके अंदर रूह डल जाती है और जिस्म बनता जाके कहीं नौवें महीने में। क्या पता चला कि दीन की असल स्पिरिट तो समझो, फिर दीन की पर झगड़े करो। हम कहते हैं नमाज कैसे पढ़नी है, हाथ कहाँ बांधने हैं, कैसे रखना है, बिल्कुल है। अब इसका बिल्कुल ये आपको नहीं कहती, आप कह दी कि नमाज में हाथ जहाँ मर्जी बांध लो, हाथ उठाओ ना उठाओ, नीयत करो ना करो, सजदा जैसे मर्जी करो, नेवर। आप इस आयत की रोशनी में उस पर भी पहुँचे कि जो लोग आज नमाज के सिर्फ तरीके पे झगड़ रहे हैं वो एक एक्सट्रीम पे हैं। रूह का पता ही नहीं पढ़ी क्यों, सारी नमाज में कुछ और ही याद आता रहा। और कुछ कहते हैं जैसे मर्जी पढ़ लो, ये भी गलत है। सल्लु कमार आई तुम उन्हीं सल्ली, बिल्कुल प्योर रिलीजन है। हमारा दीन ऐसा है कि उसमें हमें पूरी ज़ाहरी नमाज का भी तरीका पता है और उसकी स्पिरिट भी पता है, और इन दोनों को मिलाते हैं तो फिर नमाज जो है वो वाकई ज़िंदा नमाज होती है। और नमाज तकरीबन 700 बार कुरान पाक में तज़किराता है कि नमाज को कैसे पढ़ना है और क्या है और उसकी रूह। तरीका एक भी जगह नहीं दिया, ये कहा है पढ़ो, तरीका कहा है सल्लु कमा राई तुम सली, प्रैक्टिकल नबी को दिखा दिया किरदार बनाकर कि जैसे वो पढ़ता है वैसे पढ़ लो जाओ। माँ बाप के सामने खड़े होने, बैठने, बात करने का तरीका सिखाया इस्लाम में, सूरत बनी इसराइल में आप जाके सुनेंगे इंशाल्लाह। नमाज पढ़ने का तरीका कहीं नहीं बताया। इससे क्या पता चलता है कि दीन मामलात को, अखलाकियात को, डीलिंग्स को कितनी अहमियत देता है। तो फरमाया कि तुम नमाज भी पढ़ो और ज़कात भी दो। ज़कात की डिटेल ज़्यादा सूरह तौबा में आती हैं। वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, फिर मामलात पे आगे। ऐसे लगता है कि दीन की जो असल, जो दीन की रूह है ना, वो रूहानियत है कि लोगों से वादा किया तो पूरा करो, कमिटमेंट किए तो नभाओ। हमारा हाल क्या है कि कमिटमेंट तो छोड़े, हम तो जान बचाते हैं, हम कहते हैं अच्छा कहा होगा, किया होगा कभी फॉर्म फिल। यकीन करें, मुझे इतना दुख होता है मुसलमानों की सालत पे, हम जब भी कभी अपने पेपर वर्क को सीधा करते हैं ना, तो हमें इतना थद्दा मिलता है पेपर्स का, फॉर्म फिल किया हमें लोगों ने बट नॉट शोड अप, ऐसे कर दिया। पूछो भी तो उनको, या फिर फ़ोन भी नहीं, पता ही नहीं। मैं सोचती एक पेपर, चाहे उस पर 50 करोड़ सेंस लगते होंगे, कितने की कॉपी होगी, वो ज़ाया तो की, आप कितनी लिस्टों में अपना नाम लेके। इतना ज़्यादा लीनियट एटीट्यूड है आज के मुसलमानों का, और वो भी दीन के साथ। कहते हैं क्या वो पेपर ही फिल किया था, पैसे कौन से दिए। बाज़ लोग आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, सिर्फ इसलिए रजिस्ट्रेशन या फीस नहीं देते कि बन जाएंगे, और बहुत आ जाते हैं, बुक्स नहीं खरीदते कि कहीं फंस ना जाए, ताकि हर जगह रास्ता खुला रहे, जहाँ वापस जाना चले जाएं। अल्लाह करे वल मूफून बिअहदी मिज़ाहदू, तुम तो वादा दिला के अगले को उम्मीद दिला देते हो, वो तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा होता है। हम कहते हैं आएंगे शादी पे, आते ही हम जाएंगे जी आएंगे, आए नहीं, वक्त पे नहीं गए। कितनी बीसियों मिसालें को हमारी ज़िंदगियों में मौजूद हैं कि हम वादे करके पूरे नहीं करते। फिर फरमाया वस्साबिरीन फिल बासाई, फिर दीन में हमेशा सुकून वाली चीज़ें नहीं होती, हमेशा ही दीन पढ़ते हुए इतनी दीन की बातें करके खुशी नहीं हो रही जैसे इस वक्त हम बैठे इतने पुरसकून माहौल में बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अमली ज़िंदगी में आपको मुश्किलात आएंगी, जब क्लासरूम से बाहर निकलेंगी, जो बातें सुनी हुई है इसमें आपको जब अप्लाई करनी पड़ेंगी, तो फिर लगेगा असल पता। फिर कहा फस्साबिरीन, फिर सब्र करना है दीन के रास्ते में, एप्लीकेशन में, दीन के नाते में जो मुश्किल आएगी तुमने उस पर सब्र करना है। ये नहीं कि बस कहो जी के ठंडे बैठे हैं, हाँ इस क्लास के टेस्ट भी होंगे, देने पड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो बग़ैर टेस्टों के आपको आगे ले जाए, कोई डॉक्टर ऐसे कभी नहीं बनता। तो फिर उस पर जमना है, साबरीन फिल बासवद्दर्रा, ज़रर बीमारियाँ तकलीफ़ें, कभी से तबीयत ख़राब होगी, फिर भी दीन पे रहना है, फिर भी कुरान सीखना है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं छोड़नी क्लास। वहीन अलबास, और जंग का वक्त, हक़ और बातिल की जंग होगी, आपके अपने घरों में होगी, आपके अपने अंदर पहले तो होगी, नफ्स में, नफ्स को चौके लगाएगा उठो नमाज पढ़ो, अंदर से जंग हो रही है, पढ़नी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। ये सारा कुछ करोगे तो फिर होंगे उलाइकल्लज़ीन सदकू, अब हुए हो सच्चे, आज तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सच्चा हो गया। इतने काम करके सच्चे कहलाना, हम कहते हैं सारे गुनाह करके अल्लाह की मग़फ़िरत लो, ऐसी सोचे मैं ना, हम वो जन्नत लेना चाहते हैं जो जन्नत हमें सिर्फ ख्वाहिशों से मिले। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से जन्नत मिल जाए, और क्या चाहिए था। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि हिर्त ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। फारसी का एक शेर है, सिर्फ उसका मफहूम याद रखिए, है। कहते हैं कि चूमी गोयम ला इलाह बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते हैं कि अपने आप को मुसलमान कहते हुए मैं कांपता हूँ, मेरा दिल अंदर से कांपता है, क्योंकि मुझे पता है वो मुश्किलात जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद आती हैं। हसीबन्ना स्वयं युत्रकुएँ यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, सूरत अनकबूत की पहली आयत है। क्या लोगों ने ये सोचा है कि हम यूं ही छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ ये कहकर कि हम ईमान लाए, और क्या उनकी आजमाइश ना होगी, तो कहा नहीं होगी, ये सब करोगे तो फिर सच्चे हो। वह उलाइका हुमुल मुत्तकून, फिर वही मुत्तकी हैं, वो बचने वाले लोग हैं, तकवा उनकी ज़िंदगी में आएगा। क्या पता चला कि तकवा और बिर आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तकवा के बग़ैर जो नेकियां होती हैं ना, बस वो जिस्म है रूह कोई नहीं, और रूह है तो जिस्म कोई नहीं। ऐसी चीज़ों को सामने लेकर जो नेकियां वाला दीन होता है, वो आज का मुर्दा दीन, ठंडा दीन है, कहीं जज्बाती दीन है आज हमारे इर्द गिर्द, कहीं रुलाने वाला दीन है, कहीं लोगों को लड़ाने वाला दीन है, कहीं गिरोह परस्ती का नाम दीन रखा हुआ है। कोई अपने आप को लेके चलता है। किसी एक किसी की बात याद आ गई, एंड पे बता दूं कि एक आलिम बहुत आलिम बड़े गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िक़्हे हनफी से उनका ताल्लुक, तो नाम नहीं लेती, ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका ये कॉल मौजूद है किताबों में अगर आप चाहें, कि बीमार हुए जब आखिरी ज़िंदगी में, अपने आखिरी दिनों में तो बीमार थे, तो उनके दोस्त उनको विज़िट करने आए, तो उनको देख कर कहते हैं कि यार ज़िंदगी ज़ाया कर दी, ज़िंदगी ख़राब कर दी, कुछ क्या ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आपकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई, तो फिर तो हम जैसों का क्या होगा, आप तो सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत करते रहे। कहने लगे नहीं भाई, दीन की नहीं करते रहे, फ़िक़्हे हनफी की करते रहे। हमारी तो सारी तकरीरों, सारे वाज़ों का एक ही खुलासा होता था कि सारे दूसरे मसलकों पर हनफी मसलक की छाप लगा दें। हमने दीन की तो नहीं, हमने तो अपने मसलक की खिदमत की है। सिर्फ आपको ये जुमला इसलिए सुना रही हूँ कि जब रूह ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर लोग अपने अपने टुकड़े लेके भागते हैं, फिर वो उसके हाथ, जो मरता है ना तो उसकी जायदाद जिसके हाथ आती है ना, लोग लेके चल पड़ते हैं। जब रूखा फीका दीन होता है ना, तो लोग छोटे छोटे टुकड़ों पर खुश हैं, उनको अपनी चौधराहट अच्छी लगती है। तो हम सब अपने लिए रास्ता मुंतखब कर सकते हैं। इस एक आयत ने हमें दीन इस्लाम का बुनियादी मिजाज समझाया, इसमें तफसीलात नहीं है, सिर्फ मिजाज समझनी है। खुलासा कर देती हूँ पूरी आयत या पूरे टॉपिक में जो हमने बात की, ताकि पता चल जाए कि हमने क्या समझा। सच्चा दीन क्या है, सादत और निजात का दारोमदार किस पर है, इस पर नहीं है कि इबादत की कोई ख़ास शक्ल या खाने पीने की कोई ख़ास पाबंदी अपने ऊपर लगा ली जाए, कोई रस्म इख्तियार कर ली जाए, बल्कि दीन क्या है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत मोजे मार रही हो, बंदे मोमिन के अंदर लहरें उठती हैं अल्लाह की मोहब्बत की, और वो जज्बे उभरते हैं कि जिससे फिर आगे बढ़ बढ़ के वो मज़ीद नेकियों के काम करता है, जो अल्लाह ने कहा जितना कहा, और उसके अकायद, उसके मामलात, उसके अखलाकियात, उन सब के अंदर उसका रंग दिखता है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें तौफीक दे इस पर अमल करने की। तिलावत सुनते हैं एक दफ़ा इस आयत की, और साथ साथ अपना मुहासबा भी करेंगे और मदद भी अल्लाह ताला से मांगेंगे।
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون।